हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 7 और 8। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ऋषि गण जो है वो सूत जी की प्रशंसा करते हुए सप्तम श्लोक में कहते हैं, यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विधु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। यानि वेद वेदांश्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। इसके बाद जो 8वां श्लोक है इसका संबंध इसी के साथ है, इसलिए हम इसके साथ ही उसका विचारण करते हैं। कृपया सहयोग दीजिए। वित्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुः सिग्नस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमभ्युत। वित्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमभ्युत। वित्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमभ्युत। वित्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमभ्युत। वित्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमभ्युत। विथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत विथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत विथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत विथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। शब्दों का अर्थ देखिए। यानी वेद वेदां श्रेष्ठो, यानी माने वो सब कौन, जो ज्ञानी जन है, वेद वेदाम यानी वेदों के, वेदाम यानी जानने वाले पंडित हैं, यानी जो सारे जितने भी वेदों के जानने वाले हैं, श्रेष्ठो मतलब ज्येष्ठतम यानी वयोवृद्ध, जितने भी वेदों को जानने वाले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, आप बता सकते हो कौन है? सबसे श्रेष्ठ है वेद व्यास मुनि। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही वेदों को रचा है, उन्होंने ही वेदों की रचना की है, और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार हैं, जिन्होंने केवल वेदों के अध्ययन, वेदों के रचना के लिए ही यह अवतार लिया था। तो जाहिर सी बात है जितना भी वेदों का ज्ञान संसार में है वो सब प्रकट हुआ है वेद व्यास जी से, उन्होंने ही सबकी रचना की है। तो जितने भी वेदों के जानकार हैं, यानी वेद वेदाम श्रेष्ठो, जितने भी वेदों को जानने वाले हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान बादरायण है। ये जो भगवान बादरायण है यानी बादरायण वेद व्यास जी को कहते हैं। तो बोला ये जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और अन्य च मुनय, अन्य मना और भी बहुत सारे हैं, जो च मना तथा मुनय मुनिगण, और भी बहुत सारे मुनिगण हैं, वो भी वेदों को जानते हैं। ठीक है। सूत गोस्वामी को अभी पहले उन्होंने क्या कहा था, चाणक्य ऐसे बोला था ना, आज वो सूत गोस्वामी को सूत जी कहकर पुकार रहे हैं। हे सूत गोस्वामी, जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं वो वेद व्यास जी हैं, और जो अन्य च मुनया और भी बहुत सारे मुनि हैं, जो कि बहुत सारे ज्ञान रखते हैं, बहुत सारे अध्ययन जिन्होंने शास्त्रों का किया है, और परावर विदो विदु, जो परावर कहते हैं विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान के परिचित होते हैं, यानी कि परावर, पर कहते हैं सगुण को और अवर कहते हैं निर्गुण को। तो बोले परावर विदो विदु, जो भगवान के निर्गुण और सगुण रूप को जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि भगवान के निर्गुण और सगुण रूप को जानते हैं, और उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान बादरायण। और आगे कहते हैं वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम, वेत्थ मतलब पूर्णतया निष्णात, यानी कि वो सब जो कुछ भी जानते हैं, कौन, जो दूसरे ऋषि हैं वो, और जो वेद व्यास जी हैं वो, जो कुछ भी जानते वेत्थत्वम, वो सब आपको पता है। आज वो सूत गोस्वामी को यहाँ तक बता रहे हैं कि भगवान बादरायण जी यानी वेद व्यास जी जितना जानते हैं, और अलग अलग मुनि जितना कुछ जानते हैं, वो सब आपको अकेले को सब कुछ पता है। वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम, सौम्य कहते हैं शुद्ध तथा सरल व्यक्ति को। तो बोला आप इतने शुद्ध हो और इतने सरल हो कि आप सब कुछ जानते हो, तत्व तस्तद अनुग्रह, तत्व मना वह जो तत्व जानते हैं वो सब जानते हो, सर्वम सब कुछ, और कैसे जानते हो, वास्तव में इसलिए जानते हो क्योंकि उन सब का तत् यानी उनका अनुग्रहात, उन सबका आपको अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसलिए सबका अनुग्रह माना जितने भी ऋषि हैं उनका भी और वेद व्यास जी का भी अनुग्रह कृपा आपको प्राप्त हो गई है, इसलिए आप सबको जानते हो। और आगे कहें ब्रूयः यानी कहेंगे स्निग्धस्य, स्निग्धस्य का मतलब होता है विनीत, शिष्यस्य यानी शिष्य का, गुरव यानी गुरुजन, गुह्यतम गुह्यतम यानी कि जो बहुत स्निग्ध शिष्य होता है विनीत होता है, तो गुरु गुरुजन जो होते हैं गुह्यम यानी रहस्य को अप्युत उससे बता देते हैं। इन अद्भुत और पवित्र शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माध्यस्य यतोन वयादितरतश चार्थीष्वभि यः स्वरात् तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुहुयन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो तत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्रकुहकं सत्यं परम् धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मात्सराणां सतां वीद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवति महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो रिद्ध्यवरुध्यतीत्रकृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणा। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद व्यास जी ने इन प्रथम तीन श्लोकों में मंगलाचरण किया, फिर कथा का आरंभ करते हुए बताया कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषिगण स्वर्ग लोक में जिस भगवान की कीर्ति का गान होता है उसको प्रसन्न करने के लिए एक हजार यज्ञ का अनुष्ठान किया, 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। और एक दिन एक कदा तु मुनय प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतम सुतमासीनम पप्रच्छुर्रिदमादरात। एक दिन जब सूत गोस्वामी उस यज्ञशाला में आए तो उन्होंने सब मुनिगण ने क्या डिसीजन लिया कि अब यज्ञ करना बंद कर रहे हैं और हम भगवान की कथा का आस्वादन करना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी को व्यास आसन में बिठाया और प्रश्न करने लगे। सूत गोस्वामी ने कहा अभी कि आप क्योंकि यज्ञ करने आए हो तो यज्ञ करो, आपके पास कहाँ समय है कथा सुनने के लिए, समय नहीं है कथा। तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा आप समय की बात मत करो, हम 1000 साल की छुट्टी लेकर आए हैं, हम कथा सुनने के लिए इतना उत्सुक हैं कि अपने आश्रमों से अपने समस्त कार्यों से छुट्टी लेकर आए 1000 साल तक, हमारे पास बहुत समय है। यहाँ पर अगर किसी को बोलें कि भाई रोजाना आपको भागवत कथा सुननी है तो फिर ना उनके पास समय नहीं होता है, बोलते हैं हम हमारी इच्छा है बट समय नहीं है, इतने व्यस्त होते हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए हमारे पास। लेकिन जो मुनिगण हैं जिनके पास वाकई में जो मननशील हैं, जो जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है और जो वाकई में प्रेम करते हैं, वास्तव में जो प्रेम करेगा वो प्रेमी के विषय में सुनने के लिए उत्सुक होगा, वो तो सदैव सुनना चाहेगा सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। वो चाहेगा कि एक श्रोता के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको सुनने की इच्छा हो, उसके अंदर सुनने की लालसा हो, और वक्ता के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको बताने की लालसा हो मैं और भगवान की। ऐसा नहीं कि बैठ जाओ और अपने बता दे जाओ मेरी प्रशंसा। आजकल लोग है ना अपनी प्रशंसा, मैं वहां गया था, मैंने वहां पर ये करके दिखाया, वहां पर सारे लोग मुझे ही प्रणाम। नहीं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, वक्ता का सबसे बड़ा, वक्ता की क्वालिटी क्या है कि वो वेद व्यास जी के शब्दों को आपको कितना अच्छे तरीके से बता सकता है, और श्रोता के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कितना अच्छे तरीके से, कितना सिंसियरली उन शब्दों को ग्रहण कर रहा है और किस तरह से अपने आचरण में उनको ला रहा है, किस तरह से उन शब्दों को अपने जीवन में उनका प्रयोग कर रहा है। तो जो ऋषिगण थे वो बोले कि नहीं, हमें कथा सुनने के लिए हमारे पास बहुत समय है, हम भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं और आप क्योंकि योग्य हो कथा सुनाने के लिए। आगे बोला ना ऋषयः उचु, यहाँ उचु लिखा हुआ है वरना उवाच बोलते हैं। जैसे भगवत गीता में हम कैसे पढ़ते हैं कि श्री भगवान उवाच, एक बोलता है तो बोलते हैं वाच और सब इकट्ठे बोलते हैं तो बोलते हैं उचु। उन्होंने कहा, क्या कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानक आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आप इसलिए योग्य हो क्योंकि आपने जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी इतिहास हैं, वो सब आप जानते हो, उन सब के विषय में जानते हो। ना केवल जानते हो बल्कि कई बार तो आपने उनकी व्याख्या की है, ना केवल बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ बहुत ही डीपली उनका अध्ययन किया है बल्कि उनको बहुत बार है ना आख्यान किया है, उनका बखान किया है और समस्त धर्म शास्त्र को आप जानते हो और आप निष्पाप हो, निष्कलंक हो, आपके अंदर कोई कपट नहीं है, आप निरपराध हो, इसलिए आप इस बता हमें ये ज्ञान बताने के योग्य हो, हम श्रवण करना चाहते हैं, आप सुनाइए। और वो सब जानते हैं, क्या जानते हैं उसके विषय में आज बता रहे हैं, यानी वेद वेदाम श्रेष्ठ हो, यानी कि जितने जितने वेद, जितने भी वेद को जानने वाले हैं उन सब में श्रेष्ठ कौन है, भगवान बादरायण। वेद व्यास जी को यहाँ पर बादरायण कहा गया, वैसे वेद व्यास भी उनका नाम नहीं है, वेद व्यास भी उनका नाम तब पड़ा जब उन्होंने वेदों का विभाजन किया, वेद मना वेद, व्यास मना विभाजित करना। वैसे तो एक वेद था हमारे पास और अलग अलग उनको पहले सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद अथर्वेद इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया ना, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हो गया। लेकिन प्रथम उनका वास्तव में नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि कृष्ण यानी यमुना के तट पर उनका जन्म हुआ था और उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा था। लेकिन यहाँ पर इनको दादरायण कहा गया। क्यों कहा गया इसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो बद्रीनाथ में रहते थे दादरायण, और बद्रीनाथ में रहकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में क्योंकि उनकी मेन रचना है, तो बद्रीनाथ में उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे थे और श्रीमद् भागवतम भी वहीं पर लिखा था, इसलिए उनको बादरायण कहा गया। दूसरा भी एक शास्त्र कहता है कि जहां पर वो शास्त्र लिखते थे ना, वहां पर बेर के बहुत सारे बेर के पेड़ थे, बेर के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने भागवतम की रचना की थी, इसलिए भी उनको बादरायण बेर को बोलते हैं। और वहां पर बहुत सारे उस जंगल में बहुत सारे बेर के पेड़ थे, इसलिए बेर को बादर बोलते हैं, इसलिए बद्री के पेड़ जितने भी थे तो बद्री इसको बोलते हैं। तो वहां पर उस जंगल में बहुत सारे बेर के पेड़ थे, इसलिए उनको बादरायण कहा जाता है। तो जो भी है, उनको बादरायण कहने का मेन मकसद यही है कि वो बद्रीनाथ में रहते थे, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जो भगवान बादरायण भगवान के कर संबोधित किया गया है उनको, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ये मतलब है कि जितने भी ऋषि गण वहां पर थे वो सब जानते थे, क्योंकि ये ऋषि बात कर रहे हैं ना, वो सब जानते थे कि वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं। तो यहाँ पर बताया भगवान बादरायण, क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं और समस्त ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अन्य च मुनयः, अन्य का मतलब होता है एक तो वो सबको जानते हैं और दूसरे मुनिगण भी हैं जो वो सबको जानते हैं वेदों के विषय में, और वो कौन है? अब देखो, जो भी धर्म की स्थापना की जाती है, जहां पर भी धर्म की स्थापना की जाती है, तो वहां का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं वो धर्म के ऊपर दर्शन लिखते हैं, अपने फिलोसफी लिखते हैं। और उस तरह से हमारे धर्म शास्त्र यानी वेद जो हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन पर धर्म शास्त्र को लिखने वाले मुख्य 6 लोग हैं, अन्य उनको कहा गया। और मुख्य 6 लोग कौन हैं? गौतम, गणात, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और अष्टावक्र। ये अष्टावक्र, जैमिनी, पतंजलि, कपिल, गणात और गौतम ऋषि, इन्होंने धर्म शास्त्रों के ऊपर अपनी व्याख्याएं, अपना अपना दर्शन लिखा है, अपना अपना फलसफा लिखा है। तो इसलिए इन सबको अन्य च, अब देखिए यहाँ पर क्या बोले, यानी वेदम विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, अन्य च मुनयः सुत परावर विदो विदु। परावर का मतलब होता है भगवान के विषय में, परा माना सगुण, सॉरी परा का मतलब होता है निर्गुण, जो और आवारा मतलब सगुण, यानी निर्गुण और सगुण सबको जानते हैं, सबके विषय में जिन्होंने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जाता है कि बाकी वो वेदव्यास जी, बादरायण जी सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि वो सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। वास्तव में भगवान के विषय में या धर्म शास्त्र के विषय में अन्यों भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन वो रियलिटी को नहीं जान पाए। किसी भी शास्त्र में वेद व्यास जी के श्रीमद भागवतम के अतिरिक्त किसी भी शास्त्र में भगवान का इतना डिटेल से व्याख्या नहीं की गई है, इतना अच्छे तरीके से भगवान के विषय में नहीं बताया गया। तो जितने भी अपना दर्शन लिखने वाले हैं, उन सब ने जो कुछ जाना है, उन सब में श्रेष्ठ क्यों है वो? क्योंकि भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है ये, और शास्त्र कहता है वास्तव में भगवान निर्गुण है। अब यहाँ पर क्या है, निर्गुण का क्या मतलब निकालते हैं जो ज्यादातर लोग होते हैं, यानी कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है। ठीक है, भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है तो इसका मतलब है भगवान के अंदर भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन वास्तव में वेद व्यास जी ने इस बात को बताया कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, भौतिक गुण नहीं है, जैसे कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये गुण भगवान के अंदर नहीं है। वास्तव में भगवान क्या है, इन समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। जैसे भगवान कहते भी है ना, श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में भगवान बहुत अच्छा बताते हैं, माया ततमिदं सर्वं सर्वदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम् तेष्वस्थितः। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी कि इस पूरे जगत को भगवान ने अपना अव्यक्त रूप बताया है, यानी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन भगवान का ही रूप है। लेकिन समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये संसार में भगवान सारा हर चीज, भगवान कहते हैं समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, मैं दिख रहा नहीं हूँ क्योंकि मैं भौतिक प्रकृति का बना हुआ नहीं हूँ। भगवान यहाँ पर और लेकिन बाकी जितने भी हैं उन्होंने भगवान को निर्गुण ज्यादातर बताया है अपने 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 दर्शन में, लेकिन वेदव्यास जी बताते, ईश्वर उपनिषद बताता है। ईश्वर उपनिषद में वेदव्यास जी लिखते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भगवान वहां भी पूर्ण है यहाँ भी पूर्ण है, ऐसा नहीं है। अब ये सृष्टि भगवान की है, भगवान ने बनाई है, इस सृष्टि का आकार है ना, ये पूर्ण है। ये सारे जीव जितने भी जीव नजर आते हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे वनचर हो या गगनचर हो या जो भी हो, या मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उन सबका एक आकार है। अब भगवान ने जो सृष्टि की उसका आकार है, भगवान ने सृष्टि के अंदर जो प्राणी बनाए हैं उन सब का आकार है। तो भगवान आकार निराकार कैसे हो सकते हैं? भगवान भी आकार है, भगवान का भी एक आकार है, भगवान भी साकार है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि वेदव्यास जी ने ये चीज सही तरह से बताई है इसलिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं जो अपने अलग अलग टॉपिक्स में बहुत अच्छे दक्ष हैं, स्पेशलिटी है। जैसे अलग अलग होते ना वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, बहुत सारी व्याख्याएं वो करते हैं। तो अलग अलग जैसे डॉक्टर होते ना, जैसे कोई डॉक्टर डेंटिस्ट होता है, कोई हार्ट सर्जन होता है, कोई क्या होता है, हर कोई का अपना अपना एक फील्ड होता है, उसमें वो बहुत एक्सपर्ट होता है। तो बहुत सारे ऋषिगण अन्य चमुनया सूत्र परावर विदु विदु बहुत कुछ जानने वाले हैं और भी हैं। तो वो सब क्यों बता रहे हैं वो आगे बताएंगे, पहले इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। यानी कि अब पहले उन्होंने बोला था ना कि आपने पुराण भी पढ़े हैं, इतिहास भी पढ़े हैं और धर्मशास्त्र भी आप जानते हो, तो कितना जानते हो? तो यहाँ पर बताया कि जो वेदव्यास जी जानते हैं वो, और जो अलग अलग जितने भी मुनि जानते हैं वो सब आप जानते हो, क्योंकि यानी वेद विदाम श्रेष्ठ आप सबसे ज्यादा, क्योंकि वेद व्यास जी का भी पूरा ज्ञान आपके अंदर है और दूसरे जितने जितने ऋषि हैं उन सब ने भी अपना पूरा पूरा ज्ञान जो है वो आपको प्रोवाइड किया है, इसलिए आप सब कुछ जानते हो भगवान के भौतिक यानी सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हो, सब कुछ जानते हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा गया है, कहा जाता है क्योंकि वेद व्यास वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप में श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ करता है। वेद व्यास के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र छह विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों को के ग्रंथकार हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारण के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। यानी वेदांत सूत्र में तो बताया गया आस्तिकता यानी भगवान के साकार रूप के विषय में, लेकिन दूसरे जितने मुनिगण हैं उन्होंने इतना उसको अच्छे तरीके से नहीं बताया। कोई व्यास आसन पर तभी बैठता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, यानी सब कुछ उसे पता होना चाहिए भगवान के साकार रूप के बारे में, भगवान के निराकार रूप के बारे में, भगवान के परम हर चीज के विषय में उसको जब पता है तभी वो व्यास आसन का अधिकारी बनता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तकतावाद को प्रस्तुत कर सके। यानी कि अब श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा, भगवान के अस्तित्व के विषय में, भगवान के साकार रूप के विषय में सब कुछ लिखा हुआ। तो अगर कोई मतलब ऐसा है जो भगवान के साकार रूप को खंडन कर रहा है, तो उसको जो वेद व्यास की जगह पर यानी व्यास आसन पर बैठ रहा है, उसको इतना दक्ष तो होना चाहिए कि वो शास्त्रों के प्रमाण देकर उसको साबित कर सके और अपना मत जो आस्तिकतावाद का मत है उसको प्रस्तुत कर सके। श्री सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, उपयुक्त शिक्षक यानी कि सब कुछ जानते थे ना, इसीलिए नैमिषारण के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बैठाया। शिला वेद व्यास को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रमाणिक यानी शक्तियाविश अवतार है, भगवान बादरायण ऐसा कहा गया ना। आगे यहाँ पर तो ये बताया कि सब कुछ जानते हैं और क्यों जानते हैं, यानी कि आखिर सूत गोस्वामी जो सब वेद व्यास जी जानते हैं और जो सब अन्य ऋषिगण जानते थे, उनके सारे मर्म को, उनकी सारी चीजों को, उनके सारे दर्शन को वो सूत गोस्वामी कैसे जान पाए, उसके विषय में बता रहे हैं आप। वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम वेत्थत्वम, यानी वो सब आप जानते हो, कैसे जानते हो। सौम्य, सौम्य का मतलब होता है शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, सौम्य का मतलब होता है चंद्रमा की तरह शीतल, क्योंकि आप इतने शीतल हो, इतने आप सौम्य हो, इतना आपका बिहेवियर इतना ठंडा, यानी आप कभी क्रोध नहीं करते हो। एक तो वक्ता के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्रोधित नहीं, क्योंकि फिर क्या होता है कि जो पूछने वाले होंगे ना वो पहले से डर रहे होंगे कि ये पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको कुछ पूछना भी होता है फिर ऐसे माइंड में आता है कहीं वो इंसल्ट ना कर दे, कहीं वो है ना ऐसा ना हो कि वो मुझे डांट दे, तो फिर वक्ता श्रोतागण जो है ना वो डर रहे होते थोड़ा, इसलिए सौम्य होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी की क्वालिटीज में सौम्य बताया कि आप इतने ठंडे हो, कभी क्रोध नहीं करते। और पता है क्रोध क्यों आता है, क्रोध वास्तव में कोई चीज नहीं है, क्रोध काम के पूरा ना होने से प्राप्त होता है। क्रोध जो है वो इसीलिए, अगर अब जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती है क्योंकि वो निष्काम होते हैं, उनकी इच्छा होती नहीं है, उनकी एक ही इच्छा होती है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, भगवान को प्रसन्न करें। अगर उनकी मतलब वो कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर अभी उनको कोई सफलता नहीं मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है या कुछ ऐसा होता है जो मतलब भक्ति के कार्य में या किसी में भी वो कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो भी वो क्या देखते हैं कि इसमें भगवान की इच्छा है, तो फिर वो कभी क्रोधित नहीं होते हैं, कभी ऐसा उनके अंदर आता नहीं है। अच्छा, वो अपने लिए कभी क्रोधित नहीं होते, लेकिन यदि बात भगवान के ऊपर आ जाती है तो वो माफ नहीं करते। भगवान के भक्तों के ऊपर यदि जैसे हनुमान जी क्रोध करके पूरी लंका जला के आ गए, तो इस तरह से नहीं, लेकिन जैसे धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने इतना विध्वंस स्वीकार भगवान के आज्ञा पर किया, तो भगवान की जब इच्छा होती है तो भक्त करता है, लेकिन भक्त देखता है जिस चीज में भगवान की इच्छा है उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर बताया कि आप क्योंकि सौम्य हो, शिष्य का जो श्रोता है ना उसकी यहाँ पर क्वालिटी बता रहे हैं। कल हमने पढ़ा चाणक्य, यानी उसकी क्वालिटी जो वक्ता है उसको निरपराध होना चाहिए, लेकिन शिष्य की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सौम्य होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। आगे भी बताएंगे सौम्य तत्सर्वम, वो सब आप जानते हो, तत्व तस्तद अनुग्रहात, और कैसे जानते हो, अनुग्रहात, अनुग्रहात का मतलब होता है उन सब ने आपके ऊपर बहुत कृपा की है। कृपा क्यों की है? क्योंकि आपने उन सबको प्रसन्न किया है। वास्तव में भक्तों, ये हम शास्त्र के अधिकारी तभी बन सकते हैं जब गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। जब तक गुरु और कृष्ण हम पर कृपा नहीं करते तो हम शास्त्र को कभी समझ नहीं सकते। या अध्ययन का विषय नहीं है, यह नॉलेज का विषय नहीं है, यह बुद्धि का विषय नहीं है। भक्ति या भगवान के विषय में समझना तो केवल कृपा का विषय है। और जब शिष्य अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न करता है, अब यहाँ पर ये कि गुरु के प्रसन्न होने के बाद गुरु कृपा करते हैं, तो ये प्रश्न उठता है ना कि गुरु प्रसन्न किस तरह से हो, तो सेवा करके। और सेवा कैसे की जाती है वो बताएंगे आगे। स्निग्धस्य का क्या मतलब होता है? जो कि जैसे नहीं ऑयल या तेल, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है बहने की। स्निग्धस्य शब्द जो है वो स्नेह से निकला है। और जो जब हम अपने गुरु महाराज से स्नेह करते ना, तो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कहा है उनके शब्दों का। वास्तव में स्नेह का प्राकट्य कैसे किया जा सकता है? हम कभी स्नेह का प्राकट्य किसी को किसी की प्रशंसा करके नहीं करते। ये तो चापलूसी, तो कभी भी शुद्ध गुरु एक्सेप्ट ही नहीं करता। शुद्ध गुरु कब प्रसन्न होता है? जब वो शिष्य के सिंसियरिटी को देखता है कि कितना सिंसियरली वो मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। हम क्या करते हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए भौतिक रीति से उनकी सेवा करते हैं। बस ऐसे गुरु के लिए कुछ लेकर आ गए, ये भी सही है, गुरु की सेवा हर तरह से करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो कैसे प्रसन्न होते हैं? जब गुरु के आदेशों का पालन किया जाता है। गुरु कहते हैं हमारे अंदर यही क्वालिटी नहीं है। गुरु कहते हैं कि भाई आपको सवेरे उठना चाहिए, अपने साधना कंप्लीट करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, जप करने के टाइम पर आपको अच्छे तरीके से बैठना चाहिए, बीच में बात नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे आदेश गुरु महाराज देते हैं। असल में हमारे लिए तो अगर देखा जाए तो एक ही आदेश है कि अपनी 16 माला अच्छे तरीके से करनी है, अपनी 16 माला, अपने 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करनी है, मंगला और संध्या आरती करनी है। ये भक्ति सीमित करके दे दी गुरु महाराज ने हमें, लेकिन उसमें भी कितनी त्रुटियां हैं हमारे अंदर ना। हमारा जप अच्छा होता है, हम इंटेंशन सोच रहे होते हैं और अलग से बस मुंह चल रहा होता है जप करने के टाइम पर, या कभी मंगल आरती मिस हो जाती है, कभी क्या दूसरी सेवाएं मिस हो जाती हैं, या फिर कोई और अपराध नाम अपराध हो जाते हैं जिसकी वजह से। लेकिन स्निग्धस्य शिष्य वो होता है जो जैसा गुरु महाराज ने कहा है उसको अपने जीवन में आचरण करके दिखाए। और जब गुरु देखता है कि कितना सिंसियर है और कितना अच्छे तरीके से, और गुरु की ऐसा नहीं कि गुरु की आज्ञाओं क्या कोई भी गुरु की आज्ञा हो वो करने की नहीं, गुरु को भी ऐसा होता है कि गुरु के अंदर भी क्वालिटीज होती हैं। गुरु के अंदर पता है सबसे पहले तो वो शुद्ध भक्त होना चाहिए, पहली क्वालिटी होनी चाहिए जिसको आप गुरु के लिए चॉइस करते हो, वो शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त के अंदर करोड़ों गुण होते हैं, वो सारे गुण जो है वो गुरु महाराज के अंदर होने चाहिए कि वो अपने गुरु महाराज के आदेशों का सारा पालन करता हो, शास्त्र को एज इट इज बता रहा हो, शास्त्र के विषय में सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए। अवैषो गुरु न स्यात्, क्योंकि जो भगवान का भक्त नहीं है वो तो शास्त्र कहता है गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो सबसे अच्छा भक्त होना चाहिए। दूसरी नंबर पर वो अपने आप को भगवान न समझे कभी भी। वो मतलब शिष्य का कर्तव्य है गुरु को समझना कि गुरु जो है वो भगवान के तुल्य हैं, हमें भगवान के विषय में सब कुछ बताते हैं, भगवान की तरह आदर करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में खुद भगवान कहते हैं प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तदर्थम तश्चैव मम अर्पणम, कि पहले आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए। जैसे हम कभी भी सेवा करते हैं तो गुरु महाराज से स्टार्ट करते हैं, प्रथमस्तु गुरु पूज्यम, उसी से आपका कल्याण होने वाला है। क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, गुरु की कृपा होगी तभी भगवान की कृपा होगी आपका। गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं और भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु का आदेश यदि हम प्राप्त कर लें तो उस आदेश को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
और वास्तव में गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब शिष्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। देखते हैं शिष्य कि कितनी अच्छी भगवान की सेवा, ये नहीं देखते गुरु कि मेरी कितनी सेवा कर रहा है, चापलूसी नहीं देखते गुरु, देखते हैं कि वो मेरे आदेश का, क्योंकि गुरु यदि शुद्ध भक्त है तो उसका आदेश केवल भगवान के भजन का, कि आपको भजन अच्छा करना है, आपको भक्ति अच्छी करनी, और जो अच्छी भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करता है उससे फिर गुरु बाद में प्रसन्न होते हैं। देखो शिष्य गुरु कृपा करते हैं, शिष्य को आदेश देते हैं, और जब शिष्य उस आदेश को ग्रहण करके भगवान की सेवा करता है, जब भगवान प्रसन्न होते हैं फिर गुरु प्रसन्न होते हैं, और शिष्य जब गुरु का आदेश कर रहा होता है, पालन कर रहा होता है, उसको देखकर भगवान प्रसन्न हो रहे हो, यानी कि ये दोनों परस्पर है। गुरु की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान के प्रसन्न होने से, भगवान की कृपा प्राप्त होने से गुरु प्रसन्न होते हैं।
और इसके बाद क्या होता है,
और आगे बता, ब्रूयो स्टिक दस्य शिष्य से, जिस तरह मैंने बताया कि ऑयल और तेल का क्या काम होता है, बहना, तो जो बहता है गुरु के आदेशानुसार, यानी गुरु जिस तरह बोल रहा है उसके हिसाब से वो चल रहा है। बहना का मतलब होता है उनका अनुगमन करना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्निग्धस्य यानी विनीत है, जो विनम्रता के साथ उसको स्वीकार करता है शिष्य। गुरवो गुह्यतम गुह्य अप्युत, फिर जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं फिर क्या करते जानते हो, गुरु गुह्य ज्ञान यानी टॉप सीक्रेट जो साधारण लोगों को बताने के लिए नहीं होते हैं ना, वो भी गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने शिष्य को सब कुछ बता देते हैं, जो सीक्रेट्स जो एक गुरु अपनी पूरी आयु में जो सीखता है, बहुत ज्यादा बहुत मेहनत करने के बाद सीखता है, और एक सिंहदस्य शिष्य जब उसके सामने आता है जो उसके आदेशों का पालन करता है, वो एक क्षण में वो सारा का सारा ज्ञान उसे प्रदान कर देते हैं। वास्तव में गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी और रह नहीं जाता हासिल करने के लिए, क्योंकि गुरु सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, जो कुछ पढ़ना है जो कुछ सीखना है वो सब गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है, और गुरु जो जो आदेश कर रहा है हमें बस उनके आदेशों का पालन करना है। फिर गुरु सारे रहस्य गुरवो गुह्यमाप्युत, गुरु महाराज जब अब एक शिष्य से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारे गुह्यतम जो रहस्य हैं वो सब खोल के शिष्य के सामने रख देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने यानी ऋषिगण ने जो वेद व्यास की सूत्र गोस्वामी की जो प्रशंसा में तीन श्लोक है उसका अंतिम श्लोक है, वो कहते हैं, और चूंकि आप विनीत हैं, आपके अंदर नम्रता है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, आप क्योंकि इतने विनम्र हैं, वास्तव में शिष्य की चालाकी से गुरु प्रसन्न नहीं होता है, शिष्य की विनम्रता को देख के प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर बताया क्योंकि आप बहुत सौम्य हैं, आप बहुत विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, ये बताया ना, तत्व तद अनुग्रह, आपको अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। अब यहाँ पर अपने मतलब की बात की कि क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, अब हम अलग अलग के पास जाकर क्या सीखें, क्योंकि आप वेद व्यास जी जो जानते हैं वो सब आप जानते हो, अन्य ऋषियों ने जो कुछ सीखा है वो सब कुछ आप जानते हो, और सब ने आपके ऊपर इतनी अनुग्रह किया है कि तत्व से सब कुछ आपको सिखाया है, और वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम, वो सब कुछ आप बहुत सौम्य हैं, आप बहुत शीतल भी हैं और सब कुछ जानते भी हैं, कंप्लीट ज्ञान है आपके पास, तो आप वो सब हमें बताइए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य गुरु को प्रसन्न करने तथा उनके शुभाशीष प्राप्त करने में है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप आध्यात्मिक में सफलता चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि गुरु को प्रसन्न करना है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो प्रार्थना हम रोजाना सुबह गाते हैं, क्या है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सत्मा,
मनोमोह सावधान माती।
ये वाली हम लोग गाते हैं ना, उसके विषय उसका एक श्लोक यहाँ पर लिखा कि मैं अपने गुरु के चरणारविंदो को नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, उनकी कृपा होगी तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर में विघ्न ही विघ्न होते हैं। यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो आप अपनी स्ट्रगल से कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो गुरु महाराज को प्रसन्न करना होगा, गुरु के आदेशों का पालन करना होगा, गुरु के इसे बताया ना स्निग्धस्य, गुरु के आदेशों के पीछे पीछे चलना होगा। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति आज्ञाकारी तथा विनीत हो। जो भी गुरु महाराज बोलते हैं उनको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। गुरु करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है गुरु के आदेशों का पालन करना। ऐसा नहीं बस गुरु कर दिया, थप्पा नहीं लगाना होता है। गुरु ने आदेश शुरू में गुरु को जानने, गुरु को समझने के लिए पहले हमें अक्कल अपनी यूज करनी है, बुद्धि यूज करनी है कि हम इसको गुरु बनाए या ना बनाए, और जब सारी बुद्धि वहीं पर यूज कर लो, उसके बाद जब एक पूरा एक सक्षम गुरु प्राप्त हो जाता है ना, पूरा सत्यगुरु जब भी प्राप्त हो जाता है ना, फिर आपको अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु महाराज ने कहा है बस आपको एज इट इज फॉलो करना है। गुरु कह रहे हैं सुबह उठो तो सुबह सवेरे उठकर आपको भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। गुरु ने बोला ये नहीं खाना है तो बस क्यों क्या ये नहीं, बस गुरु कह दे और आदेशों का पालन विनीत भाव से करना है। समझने के लिए प्रश्न पूछना है, देखो प्रश्न का करने के लिए भी यहाँ पर बताया, यहाँ पर सोने का आदि ऋषि भी तो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ये मूड नहीं होना चाहिए कि बस ऑग्यू नहीं होने चाहिए। प्रश्न पूछना है सिर्फ समझने के लिए, ताकि हम आगे सब समझा सके ना, जानकारी ज्ञान हासिल करने के लिए। लेकिन गुरु ने जो कहा है उसके आदेश, गुरु को कैसे जानते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम टीचर को बोलते हैं कि ये सही नहीं, हम क्या बोलते हैं कि नहीं समझ में आया, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सही है आप मुझे समझाओ कि कैसे सही है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति आज्ञाकारी तथा विनीत हो। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, यानी सूत गोस्वामी के अंदर विनम्रता थी, आज्ञा का पालन करते थे, गुरु महाराज को प्रसन्न किया था, इसलिए अतः उन पर विद्वान तथा स्वरूप सिद्ध शिला वेद व्यास तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि हुई। वेद तत्व सौम्य तत्सर्व तत्व तस्तद अनुग्रह, क्योंकि आप इतने सौम्य हो, इतने विनीत हो, इतने आज्ञाकारी हो, तो सबने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, तो इन सब विद्वानों ने श्रील वेद व्यास जी ने और समस्त गुरुजनों ने आपके ऊपर कृपा दृष्टि की है। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक भक्त है, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उतावले थे। इतना अब बता रहे हैं कि आप ही एक ऐसे हो जो हमारे समस्त बातों, हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, आपको तो सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हो, तो आप कृपा करके हम पर इतनी अनुग्रह हम पर कीजिए, हमें बताइए, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। और उन्होंने क्या प्रश्न पूछे, कल हम पहला प्रश्न पूछेंगे। अब देखो हमने 8 श्लोक कर लिए हैं, नवा श्लोक जो श्रीमद् भागवतम चैप्टर 1 कैंटो 1 श्लोक नंबर 9, वो नवा श्लोक है और वो पहला प्रश्न है जो कि ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। तो कल से हम जो श्लोक, जो भी प्रश्न होंगे ना, वो याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप तैयार रहेगा, कल हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।